संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्थ तदनु वर्तते। प्रभात की इस मंगल वेला में हम एक उदार चरित लक्ष्मण चरित का श्रवण करने समवेत हुए हैं। इस चरित के उद्गाता मूर्धन्य मनीषी एवं यशस्वी वाग्मी स्वामी आत्मानंद जी महाराज हैं। मैं आप सबकी ओर से पूज्य स्वामी जी के प्रति प्रणिपात निवेदन करती हूँ। आप सभी सर्वदय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। रामचरितमानस चरितों की अक्षय निधि है। सभी चरित एक से एक सुंदर, एक से एक बढ़कर। भगवान राम का चरित तो दिव्य अलौकिक है ही, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। सत्य के लिए प्राण देने वाले पिता नरेश दशरथ जी, कर्तव्यशीला माँ कौशल्या जी, वीरवती सुमित्रा जी, सौम्य सात्विक धर्मधुरीण भरत जी, मौन कर्तव्यरत शत्रुघ्न जी, पतिव्रता भक्ति स्वरूपा जगत जननी जानकी जी, तपोनिरता अश्रुमती उर्मिला जी, नेपथ्य में नीरव मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी, खल वन पावक पवन पुत्र हनुमान जी प्रभृति सभी चरित्र त्याग तप सहिष्णुता एवं कर्तव्य के ज्वलंत आदर्श हैं। इन चरितों का पठन या श्रवण एक तीर्थ यात्रा है। इस चारुचरित माला में शेषावतार सौमित्र लक्ष्मण जी का चरित्र निरूपण एवं अप्रतिम है। भगवान राम जहाँ भी खड़े हैं वहीं लक्ष्मण हैं, दोनों संपृक्त हैं। यह अखंड जुगल जोड़ी है। वे खड़े हैं आदर्श भाई की तरह, सचिव की तरह, सेवक की तरह, शरीर रक्षक की तरह, भक्त की तरह, कीरति भूति सुगति सबको भूल कर, सभी संबंधों को तृणवत त्याग कर। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अर्धाने में लक्ष्मण जी की चरितगत विशेषताओं को उजागर कर दिया है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान राम की कीर्ति का जो झंडा फहरा रहा है उसका डंडा लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी चपल हैं, उग्र हैं, तेजस्वी हैं, स्वाभिमानी हैं और शौर्य की तेजोदीप्त मूर्ति हैं, क्रोधी हैं। किंतु ऐसा सात्विक रोष, पुण्य प्रकोप, निष्काम क्रोध योग भारतीय संस्कृति में विरल है। वास्तव में यह क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं, यह तो मन्यु है, जिसके लिए वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं, मन्यु रसी मयुम मई धेहि। हे प्रभु, आप मन्यु रूप हैं, मुझे मन्यु दें। लक्ष्मण जी जहाँ जिस परिवेश में हैं, वहाँ अनीति अन्याय एवं अनौचित्य के लिए प्रतिभर भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे तेजस्वी समर्पणशील चरित का श्रवण हमें स्वचरित के गठन में अधिक प्रेरणा दे, यही मंगल आशा है। मैं पुनः पंडित जी को प्रणाम।
माननीय सौभाग्यवती सरला जी, प्रिय भाई बसंत कुमार जी, स्वामी भागवतानंद जी, ब्रह्मचारी देवव्रत जी, देवियों और सज्जन, इस बार पुनः प्रभु की अनुकंपा से और इस अत्यंत सौजन्यशील स्नेहशील दंपत्ति की प्रेरणा से यहाँ पर आप सबके बीच उपस्थित होने का मौका लगा है। पिछली बार मैं यहाँ पर आया था, मेरे नेत्र में कुछ खराबी थी और उसके लिए मॉस्को में चिकित्सा की गई। सारा प्रबंध भाई बसंत कुमार जी ने किया, वहाँ जाने आने का, रहने का, चिकित्सा का, ऑपरेशन का, और उससे मेरी दाहिनी आँख जिसमें रोशनी नहीं थी 90% रोशनी फिर से आ गई। यह भी प्रभु की कृपा है। जो भक्त जनों के माध्यम से जीवन में परिलक्षित होती रहती है। यह जो आज लक्ष्मण जी पर प्रसंग लेना है, बड़े ही सुंदर ढंग से नपे तुले शब्दों में सौभाग्यवती सल्ला जी ने उनके चरित्र का आकलन हमारे समक्ष रखा है। जो विशेषण उन्होंने वक्तव्य में हमारे समक्ष रखे लक्ष्मण जी के संदर्भ में, वे बड़े सार्थक विश्लेषण हैं, विवरण बहुत सार्थक है और इन आने वाले दिनों में उन्हीं शब्दों को विस्तार से आपके समक्ष समझाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो आप लोग सुधी श्रोता हैं, पंडित राम किंकर जी महाराज के प्रवचनों को सुनते रहते हैं और रामचरितमानस पर उनका जैसा अधिकार है उस प्रकार का अधिकारी वक्ता मैंने नहीं सुना है। इसलिए जो मैं कहूंगा आपके सामने वह पहले भी आप उनके मुख से सुन चुके होंगे, परंतु जैसा अभी अभी सल्ला जी ने बताया कि बारंबार उन प्रसंगों को सुनने से रस का ही वर्धन होता है, तो उसी विश्वास को लेकर के हम फिर से चरित्र के लक्ष्मण जी के चरित्र के उन पक्षों को देखने की चेष्टा करेंगे। पर प्रारंभ में आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, रामचरितमानस की परंपरा का निर्वाह करते हुए। मेरे साथ दोस्त बंधु आए हैं स्वामी भागवतानंद जी, कटिहार के रामकृष्ण मिशन के वे अध्यक्ष हैं बिहार में, और दूसरे ब्रह्मचारी देवव्रत यहीं पर अद्वैत आश्रम में कार्य करते हैं। आइए इस संक्षिप्त भूमिका के साथ कुछ क्षण हम लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें।
श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम।
अभी प्रारंभिक भाषण में सल्ला जी ने एक उदार शब्द का उपयोग किया है। लक्ष्मण जी का चरित्र उदार है। गुरु वशिष्ठ नाम रखते हैं लक्ष्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी की उदारता कहां पर दिखाई देती है, यह प्रश्न हमारे मन में उभरता है। जब भी लक्ष्मण जी का चरित्र सामान्य रूप से हमारे समक्ष आता है, ऐसा लगता है कि वे बड़े क्रोधी हैं। ऐसा भी लगता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। ऐसी बातें कह देते हैं जिनके लिए महाराज श्री जनक को भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी दृष्टि में कुछ भ्रांतियां लक्ष्मण जी के चरित्र के संबंध में उत्पन्न हो जाती हैं। गोस्वामी जी ने जिन रंगों में श्री लक्ष्मण जी का चरित्र भरा है, वह काव्य की दृष्टि से तो अनुपम है ही, पर जो हमें चरित्र माला प्राप्त होती है, उस माला में भी बहुत सुंदर रूप से निखरने वाला लक्ष्मण जी का चरित्र सामने आता है। वाल्मीकि रामायण में भी श्री लक्ष्मण चरित्र को उभारने की चेष्टा की गई है। वे तो आदि काव्य के गायक हैं, बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, पर गोस्वामी जी के वर्णन की अपनी विशेषता है। प्रारंभ में ही बाल कांड में जब वे वंदना करते हैं इन चारों भाइयों के चरणों की, तो सबसे लंबी वंदना वे लक्ष्मण जी की ही करते हैं, और वंदना करते करते कहते हैं
बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, सुंदर सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतरव भूमि भय हारण, सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर।
चार चौपाइयों में चरणों की वंदना की। कहते हैं बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, सुंदर सुभग, उनके चरित्र के संबंध में, जीवन के संबंध में कहते हैं कि सुंदर सुभग भगत सुखदाता, और फिर वे कहते हैं रघुपति कीरति विमल पताका, जिसका अभी आपके समक्ष वर्णन किया गया, दंड समान भयो जस जाता, भगवान श्री राम की विमल कीर्ति पताका के लिए वे दंड स्वरूप है, इसका भी वर्णन आपके समक्ष करने का प्रयास किया जाएगा। और फिर कहते हैं शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतरेव भूमि भय हारण, सदा सानुकूल रह मोपर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। और जब वंदना करते हैं इन चारों भाइयों में, तो सबसे पहले श्री भरत जी की वंदना में कहते हैं
प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, जासुनेम गत जाइन बरना।
कहते हैं कि मैं उनके नेम इत्यादि का क्या वर्णन करूं, उनके श्री चरणों की मैं वंदना करता हूं। रामचरण पंकज वहां पर वे कहते हैं कि रामचरण पंकज मन पासु, जिनका मन हर समय श्री राम के चरण रूपी पंकज कमल में भौरे के समान पड़ा हुआ है, लुबुद मधु पर इव कहते हैं कि हर समय लुब्ध भौरे के समान पड़ा हुआ है। दो चौपाइयों में भरत जी के चरणों की वंदना करते हुए वे कहते हैं, और जिस समय शत्रुघ्न जी के संबंध में कहते हैं वहां पर तो कहें
रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामि।
एक चौपाई में उनके चरणों की भी वंदना की, और वहीं पर प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सबलायक राजिम नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक।
दो चौपाइयों में प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। अब यह विलक्षण लगता है कि उन्होंने चार चौपाइयों में श्री भरत श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की। यह जो विस्तार दिखाई देता है उसका कारण क्या है? कारण यह लगता है कि उन्होंने लक्ष्मण जी के तात्विक रूप का भी संकेत यहाँ पर दिया है। अन्य भाइयों के संदर्भ में उन्हें ऐसा लगता है कि तात्विक संकेत की कोई आवश्यकता नहीं है। वे भरत जी के व्यक्तित्व की वंदना करते हैं, उनके संतत्व की वंदना करते हैं, जासु नेम व्रत जाइन वरना, और वे ऐसे हैं कि जिनका मन श्री राम के चरण कमल में लुब्ध मधु के समान है। तो मानो व्यक्तित्व का खुलासा वहां पर भरत जी का करते हैं, और रिपुसूदन के संबंध में तो उन्होंने बहुत थोड़ी ही बात कह दी, भगवान श्री राम के संबंध में भी अधिक विस्तार नहीं करते, परंतु उन्हें ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी के चरित्र का कुछ विस्तार करना चाहिए, इसलिए उनके तात्विक रूप को हमारे समक्ष वे रखते हैं। तात्विक रूप क्या है? शेष सहस्र शीश जग कारण सो अवतरे भूमि भय हारण, कि वे सहस्र शीश शेष हैं, यह वे कहते हैं। और इसका कारण यही लगता है कि लक्ष्मण जी के संदर्भ में जो कुछ भ्रांतियां हमारे मन में आ जाती हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी के तात्विक पक्ष को रखना उचित समझा, कि वे वस्तुतः कौन हैं, किस लिए आए हैं, और किस प्रकार लक्ष्मण जी का चरित्र आज के हमारे संदर्भ में भी कार्यशील होता है, यह बताने की दृष्टि से वे उनके चरणों की वंदना का विस्तार करते हुए हमारे समक्ष लिखते हैं। अब ये कौन है? लक्ष्मण जी के चरित्र को यदि तात्विक दृष्टि से न देखें तो मैं समझता हूं कि उनके संबंध की भ्रांतियां दूर नहीं हो सकती। हम यही कहेंगे कि वे क्रोधी हैं, थोड़ी सी बात में वे रुष्ट हो जाते हैं, और जो शब्द उन्हें नहीं कहने चाहिए ऐसे वे शब्द कहने लगते हैं, पर वस्तुतः किस हेतु से लक्ष्मण जी ऐसा करते हैं? क्या वे इंपल्सिव हैं? जैसे एक कोई व्यक्ति इंपल्सिव होता है, उसके मन में कोई बात पूछी और बिना किसी विचार के वह कोई बात कह देता है, तो क्या लक्ष्मण जी भी इसी प्रकार इंपल्सिव हमें दिखाई देते हैं कि उन्हें कुछ लगा कि यह अनुचित हो रहा है, उचित और अनुचित का विचार किए बिना फट से जो मुंह में आया उन्होंने कह दिया, यह जो दिखाई देता है, यदि यह पृष्ठभूमि हमें ज्ञात न रहे तो लक्ष्मण जी को गलत समझना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इसी दृष्टि से हमारे समक्ष गोस्वामी जी लिख देते हैं कि देखो ये लक्ष्मण जी वस्तुतः हैं क्या। तो उनके संदर्भ में वे बात लिखते हुए कहते हैं कि आदि दैविक अर्थों में लक्ष्मण जी तो हैं वही शेष जिसको कहा गया पुराणों की भाषा में। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि ठीक है, यह जो सृष्टि हमें दिखाई देती है तो सृष्टि के पहले क्या था, इस पर हम थोड़ा विचार करें तो शेष की जो प्रतीकात्मक व्याख्या है उस व्याख्या को समझने में सुविधा होगी। पुराण कहते हैं कि प्रारंभ में केवल जल ही जल था, जब सृष्टि नहीं थी तो केवल जल ही जल था। नारायण नार नर में अयन करने वाला शयन करने वाला, ये नर ही मानो नर मान नार का मतलब है जल, तो नार में जो शयन करता हो, नार ही जिसके लिए रास्ता हो, नार ही जिसके लिए भवन हो, नार ही जिसके लिए महल हो, तो ऐसे ये नारायण है, ये जल में शयन कर रहे हैं, यह पुराणों की प्रतीकात्मक भाषा है। तो वहां पर हम देखते हैं पुराणों में कि नारायण जल में हैं, शेष सहस्र शीश शेष में सोए हुए हैं और लक्ष्मण जी चरण चाप रही हैं। यह एक परंपरागत चित्र हमारी आंखों के समक्ष आता है। पुराणों को पढ़ते हैं तब इसका मतलब क्या है। यह जो सृष्टि है वह बीच में दिखाई देती है, पहले भी नहीं थी, जब प्रलय हो जाएगा तब भी सृष्टि नहीं दिखेगी, यह बीच में दिखती है। और जब सृष्टि नहीं है तब क्या है, तब का यही वर्णन है कि साक्षात नारायण शेष में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं, तो ये केवल तीन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, नारायण है। और जिस समय नारायण सुप्त है तब भी शेष जागृत है। आप देखते हैं कि वह शेष कभी सोता नहीं है, वह जो सहस्र शीर्ष शेष है जिसकी कल्पना हमने पुराणों में की है, जिसको वहां पर बिस्तर बना करके सोए हुए हैं नारायण, यह शेष कभी नहीं सोता है। लक्ष्मी जी भी वहां पर हैं, भले ही नारायण तंद्रित हो, भले ही ब्रह्म सोया हुआ हो, पर शेष तत्व ऐसा है जो कभी सोता नहीं है, हर समय जागृत है। इस प्रकार से हमारे समक्ष शेष का चित्रण किया गया है। अब यह जो शेष का चित्रण किया गया है किस प्रकार से, कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी ये तीनों थे, और जब सृष्टि होती है तो तीनों के माध्यम से होती है, तो यह प्रतीकात्मक जो वर्णन है, इस वर्णन को यदि हम इन तीनों पर लगाएं, भगवान श्री राम पर, सीता जी पर, लक्ष्मण जी पर, तो उससे लक्ष्मण जी के चरित्र का जो माधुर्य है, उसका जो वैशिष्ट्य है, वह वैशिष्ट्य हमारे समक्ष उजागर होता है। वैसे तो हम भी प्रलय का अनुभव करते हैं, प्रतिदिन हम जिस समय सुषुप्ति में जाते हैं वह भी छोटा सा प्रलय है, प्रलय के ही समान है। तो प्रलय में सब कुछ का नाश तो नहीं होता, हम भले ही सो जाएं, पर दो चीजें नहीं सोती हैं। एक तो हमारी क्षमताएं जो हैं वे भी बनी रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। हम सो गए हैं पर दो चीजें बनी रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। हम भले ही प्रलय की अवस्था में चले गए हों, मन सुप्त हो गया हो, पर हमारी क्षमताएं बनी रहती हैं, क्योंकि जो ही हम जागते हैं क्षमताएं प्रकट हो जाती हैं। और दूसरा जो तत्व सोता नहीं है वह काल तत्व है। जैसे मान लीजिए मुझ में वक्तृत्व का गुण है, किसी व्यक्ति में संगीत का गुण है, जिस समय सो गया ऐसा लगता है कि शायद उसका वक्तृत्व भी कहीं खत्म तो नहीं हुआ, उसका संगीत का अभ्यास खत्म तो नहीं हुआ। हम देखते हैं वह खत्म नहीं हुआ है। मैं जब जागता हूं तो मेरा वक्तृत्व जाग जाता है, प्रकट होता है। किसी को संगीत का अभ्यास हो वह प्रकट होता है। मानो हमारी क्षमताएं नष्ट नहीं होती, क्षमताएं मानो रहती हैं और जागते ही ये क्षमताएं प्रकट हो जाती हैं। और दूसरा जो तत्व है जो सोता नहीं है वह काल तत्व है। हम लोग जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मैं सोया था और मैं 3 बजे उठने की इच्छा करता हूँ, तो मैं बिस्तर से कह देता हूँ या तकिए से कह देता हूँ कि मुझे उठा देना और मेरी नींद खुल जाती है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं। तो वस्तुतः कोई तकिया या बिस्तर हमें नहीं उठाता है, वह जो काल तत्व सदा जगा हुआ है, जिससे हमने अपने को जोड़ने की चेष्टा की और कहा कि हमें जगा देना, वही काल तत्व हमें जगा दिया करता है। तो यह काल तत्व कभी सोता नहीं, वह जागरूक है। तो इन तीनों को कारण के रूप में हमारे समक्ष रखा गया। ये तीन है सृष्टि के कारण, आदि कारण। जैसे कहते हैं गोस्वामी जी वहां पर लिख रहे हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। भगवान श्री राम के संबंध में लिखते हैं, जब जा रहे हैं दोनों के दोनों विश्वामित्र जी के साथ, तो लिखते हैं पुरुष सिंह दो वीर चले, हरषि चले, मुनि भय हरन, और ये कौन है, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। ये अखिल विश्व के कारण है और करण है। सीता जी के संबंध में वहां पर लिखते हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरहि मोरि यह माया। यह आदि शक्ति है जिन्होंने इस जग को उत्पन्न किया है। और लक्ष्मण जी के संदर्भ में तो कही दिया, शेष सहस्र शीश जग कारण, वे जगत के कारण है। अब ये तीनों के तीनों हमारे समक्ष कारण के रूप में आते हैं, तो साक्षात ब्रह्म है नारायण के रूप में, श्री राम के रूप में। उनकी शक्ति है लक्ष्मी जी, सीता जी, और लक्ष्मण जी हैं काल तत्व। तो सृष्टि की प्रक्रिया में ये तीनों के तीनों सम्मिलित होते हैं। जैसे अगर शक्ति ना हो तो ब्रह्म किससे सृजन करेगा? ब्रह्म अपने आप में निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। हम तो ब्रह्म के संबंध में वर्णन पढ़ते हैं, नेति नेति है, अवांग मनस गोचर है, अविकारी है। तो जो अविकारी है, जो निर्गुण है, निराकार तत्व है, उसमें फिर कहां से वह क्षमता उत्पन्न होगी सृजन करने की? तो यह जो क्षमता है वह शक्ति से प्राप्त होती है। तो शक्ति ना हो तो भी सृजन का कार्य ना हो, और यदि निर्माता ना हो तो भी सृजन ना हो। अब शक्ति है पर निर्माण करने वाला ना हो तो भी केवल शक्ति से कार्य नहीं होगा, तो निर्माता भी चाहिए और निर्माता के पास निर्माण करने की शक्ति भी चाहिए। और जिस समय निर्माता निर्माण करता है तो वह एट रैंडम जिसे कहते हैं, कोई चामत्कारिक दृष्टि से नहीं करता है, बल्कि वह किसी नियम के तहत मानो किसी काल तत्व को साथ में लेकर के वह वहां पर सृजन की प्रक्रिया करता है। मान लीजिए मैं एक बीज बपित करता हूं तो चामत्कारिक दृष्टि से कोई एकदम से वृक्ष नहीं आएगा, काल तत्व की अपेक्षा है। तो ईश्वर भी जब सृजन करता है तो काल तत्व की सहायता लेकर के सृजन करता है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी सृष्टि हो रही है उसमें काल तत्व बराबर साथ में बना हुआ है, तो ईश्वर भी सृजन करने के लिए काल तत्व की सहायता लेता है। ये तीनों के तीनों एक साथ मिलकर के इस जगत का सृजन करते हैं। तो यह पहला पक्ष आता है श्री लक्ष्मण जी के संदर्भ में कि वे ऐसे काल तत्व हैं। और लक्ष्मण जी कैसे काल तत्व हैं कि ब्रह्म के सुप्त होने पर भी, नारायण के सो जाने के बाद भी वे बिल्कुल जगे हुए हैं, सबके मिटने के बाद भी जो बचे हैं, सबके सोने के बाद भी जो जगे हैं, ऐसे जो तत्व हैं उसको हम कहते हैं शेष। इनका नाम दिया है शेष, और आप तो जानते हैं गणित में शेष उसको कहते हैं जो कभी कटता नहीं, माने कटने के बाद जो बचा है, जिसको कोई काट नहीं सकता है, जो कभी मिट नहीं सकता है, ऐसा यह काल तत्व है जो हमारे समक्ष आता है लक्ष्मण जी के रूप में। यह दूसरा पक्ष जो है, जैसा हमने कहा कि आदि दैविक अर्थों में लक्ष्मण जी हैं सहस्र शीर्ष शेष, उनके सहस्र मुख है ऐसा बताया गया। और फिर जिसको हम आध्यात्मिक पक्ष में कहेंगे कि यह काल तत्व है, थोड़ा सा हम कल्पना करके देखें यह जो व्यक्ति है वह कहां पर स्थित है? देश में। देश कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि देश काल में स्थित है। यह जो जितना देश है, आकाश है, यह जो हम दिखाई देते हैं, नक्षत्र देखते हैं, यह वस्तुतः कहां पर स्थित है? तो यह कहेंगे, हमें कहना ही पड़ता है कि यह सब काल में स्थित है। तो मनुष्य है देश में स्थित और सारा का सारा देश है काल में स्थित। इसीलिए हम प्रतीक में पढ़ते हैं, प्रतीकात्मक रूप से पुराण में, यह पृथ्वी उस शेष के सिर पर है। इसका मतलब है कि काल इसका वहन कर रहा है, काल के भीतर में यह सारी पृथ्वी स्थित है, यह इससे मालूम पड़ता है। तो लक्ष्मण जी जो हैं, तो लक्ष्मण जी भी अपनी इस भूमिका का निर्वाह करते हैं। किस प्रकार करते हैं, यही हम इन प्रवचनों में देखने की चेष्टा करेंगे। यह काल तत्व कैसे मानो अपने सार्थक अभिनय को हमारे समक्ष रखते हैं। आप तो जानते हैं रामचरित मानस में जो श्री राम की मधुर लीला हमारे समक्ष रखी गई, तो उसमें यही बताया है कि प्रभु लीला करते हैं। यह अंतर है वाल्मीकि की रामायण में और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामकथा में। मैं यहाँ पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि जी के चरणों में मेरी प्रथम श्रद्धा, वे प्रथम पूज्य, वे इस रामकथा के आदि गायक, और यदि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी एक साथ यदि उपस्थित हों तो मैं वाल्मीकि जी के चरणों में प्रथम लुंठित होऊंगा। केवल मैं इसकी विशेषता दिखाने के लिए, रामचरितमानस की विशेषता दिखाने के लिए आपके समक्ष यह बात रख रहा हूं। वैसे यह मैं पहले कह चुका हूं कि हम लोग अपनी परंपरा में यह मानते हैं कि वाल्मीकि ही इस कलिकाल में तुलसी का रूप लेकर के आए हैं। संत नाभादास हो गए जो गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे, जब उन्होंने पांडुलिपि पढ़ी रामचरितमानस की, इतने हर्षोत्फुल्ल हो गए। उन्होंने बधाई देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी पर एक कवित्व की रचना ही कर दी, और उस कवित्व के जो अंतिम दो चरण हैं उसमें यह कहा गया है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। कहते हैं कि इस कलि कुटिल कलि काल में जीवों के निस्तार के लिए वाल्मीकि ही तुलसी बनकर के आते हैं, तो यह हमारी मान्यता है। तो उस समय की आवश्यकता अलग थी, वाल्मीकि के युग की, तुलसीदास जी के युग की आवश्यकता भिन्न थी। दोनों ने भिन्न दृष्टियों से श्री राम को देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साक्षात ब्रह्म के रूप में देखा है, और वहां पर वाल्मीकि जी ने मनुष्य पक्ष को देखा है, और मनुष्य पक्ष की दृष्टि से श्री राम के चरित्र का विश्लेषण किया है। इसीलिए वाल्मीकि की रामायण को हम इतिहास कहते हैं, और यह जो है यह भाव से लिखी गई गाथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। इसीलिए तो जब रामचरित मानस इस नाम की वे व्याख्या करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो आप पढ़ते हैं, वे लिखते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो सिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर धर उनाम हेरी हर सिहर। किसी ने पूछा कि आपने रामचरित मानस नाम क्यों दिया, अन्य कोई नाम दे सकते थे, तो उन्होंने कहा कि रचि महेश निज मानस राखा,